ओम शांति। दो बातों को लेकर कई भाई बहने प्रश्न पूछते रहते हैं कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा है। पीछे जो भी बाबा की मुरली चली उसमें बाबा ने दो बातों का इशारा दिया कि ड्रामा जैसे निमित्त बनाएगा आगे वैसे मिलते रहेंगे, है? और दूसरा बाबा ने कहा कि हलचल की परिस्थितियों में भी अचल और अडोल रहना है, कभी अपने कार्य को नहीं छोड़ना है, सेवा को नहीं छोड़ना है। तो उसी दिन से कई भाई बहने इसके बारे में प्रश्न पूछते रहते हैं, कैसे बाबा ने क्यों कहा है, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट गति से जा रहा है और अंत का समय समीप आ रहा है और नई दुनिया आनी है, तो उसके लिए परिवर्तन जरूरी है। तो बाबा का भी कार्य ये पूरा होने को आया है और परिवर्तन में क्या होगा, परिवर्तन होगा तो जरूर हलचल होगी। तो उन हलचल की परिस्थितियों में हमारी स्थिति पर उनका प्रभाव नहीं आए। जो भी बातें परिस्थितियां हम सभी के सामने आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में रहते हुए हम उन परिस्थितियों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख सके, हम सभी को एक ऐसी स्थिति बनानी होगी जो कि कैसी भी परिस्थिति हमारी स्थिति को हिला ना सके, प्रभावित ना कर सके। तो उसके लिए पहले से ही हमें पूरी तैयारी करनी होगी, क्योंकि बाबा ने तो कहा है कि अचानक ही सब कुछ होना है। अभी भी सुन रहे होंगे आप सभी भी हैं, दिसंबर एंड में कोई कहता है 21 तारीख को विनाश हो जाएगा, कोई कहता है एंड में होगा, अनेक प्रकार की बातें हैं। खैर जो भी कुछ हो उस बात में हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, समय अनुसार जो होगा वो निश्चित है, वो होना ही है। लेकिन उसके पहले हम अपनी स्थिति को ऐसा बना लें जो उन परिस्थितियों में रहते हुए उनके प्रभाव से मुक्त रहे। या बाबा ने जो कुछ हमें होमवर्क दिया है, बातें बताई हैं, उसको हम पूरा कर ले तो भी हमारी स्थिति उन परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रहेगी, एक रस अचल अडोल स्थिति हम बना सकेंगे। तो अभी भी जो गीत सुन रहे थे हम सभी कि मेरा बाबा ये सदैव याद रहे, मेरा बाबा मेरे साथ है और वो क्या क्या हमें दे रहा है, बाबा कौन है और क्या दे रहा है हमें, उन प्राप्तियों को उन स्मृतियों को याद करें। बाबा सर्व शक्तियों का खजानों का दाता है, ऑल माइटी अथॉरिटी है। तो ऐसे बाप को यदि हम सदा स्मृति में रख के चलेंगे तो क्या होगा, सभी प्रकार की परिस्थितियों के प्रभाव से हम अपने आप को मुक्त रख सकेंगे। और जो बाबा कहता है कि सुख दुख हानि लाभ निंदा स्तुति जय पराजय सब में तुम्हारी स्थिति समान होनी चाहिए, कहने में तो इजी है, लेकिन जब वो परिस्थिति आए और उस में हमारी स्थिति समान रहे, उसके प्रभाव से मुक्त रहे, इसके लिए जरा कुछ सोचने की आवश्यकता है, पहले से तैयारी करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए एक तो बताया कि मेरा बाबा है सर्व खजानों का शक्तियों का दाता, वो मेरे साथ है, ये सदैव स्मृति इमर्ज रूप में रहे, उस नशे में रहकर चले तो उनके प्रभाव से मुक्त रहेंगे। और दूसरी बात कि अपने स्वभाव को सरल बनाएं, इजी नेचर। कुछ भी बात हो जाए हम सहज भाव से लें। तो जो सरल स्वभाव वाली आत्मा होगी क्या होगा, वो उसके अंदर ये कला, ये गुण, ये शक्ति आ जाएगी कि जैसी परिस्थिति वो वैसे अपने आप को सहजी मोल्ड कर लेगी, परिवर्तन कर लेगी। जैसे कि मान लो अभी ठंडी ज्यादा है तो गर्म कपड़े पहन लेते हैं ना, बरसात आई तो छाता ले लेते हैं। तो इस तरह से उस आत्मा के अंदर परिवर्तन करने की शक्ति सदा इमर्ज रूप में रहेगी। और प्रभाव मुक्त होने के लिए ये परिवर्तन शक्ति बहुत जरूरी है। बाबा ने सुना 2-3 साल पहले की मुरली में ये वरदान के रूप में ये बात बताई है, परिवर्तन शक्ति का वरदान दिया बाबा ने, कि जिस बात में हम अपने आप को जैसा बनाना चाहें, परिवर्तन करना चाहें, वो सहज कर सकें, वो तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने स्वभाव को सरल बनाकर चलें। मुझे याद आता है एक मुरली के स्लोगन में बाबा ने ये बात कही। देखो हैं दो बातें, लेकिन उसके द्वारा कितनी ऊंची प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा स्वभाव में सरल और पुरुषार्थ में अटेंशन रख कर चलो तो नंबर 1 में आ जाएंगे। दो शब्द और इतनी ऊंची प्राप्ति, स्वभाव में सरल और पुरुषार्थ में अटेंशन रख के चलो तो नंबर 1 में आ जाएंगे। तो कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ कहे, कैसी परिस्थिति आए, बस हम सहज भाव से हल्के रूप से उसे लेंगे तो अनुभव ये कहता है कि परिस्थिति भी हल्की हो जाएगी। क्योंकि बाबा ने कहा जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। और बाबा के ये महावाक्य हैं कि यदि तुम सदा ही अपनी श्रेष्ठ स्व स्थिति में रहो तो वहां परिस्थितियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। इतनी श्रेष्ठ है वो हमारी स्व स्थिति, जिसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं श्रेष्ठ स्वमान की सीट। उस पर हम स्थित होकर चलें तो बाबा ने कहा वहां हर गुण और हर शक्ति का नशा स्वतः इमर्ज रूप में रहेगा। तो परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए भी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी ना, गुण और शक्तियों की। तो उसके लिए हम सदा ही अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर स्थित होकर रहेंगे तो वहां हर गुण और हर शक्ति का नशा स्वतः इमर्ज रूप में रहेगा और उस परिस्थिति को हम सहज पार कर लेंगे। नाम ही है पर स्थिति, माना दूसरी स्थिति, स्वयं की स्थिति नहीं है। तो परिस्थिति कभी भी ठहरती नहीं है, वो सदा नहीं रहती है, है? आई और चली गई। अभी समय है, हम सब क्लास कर रहे हैं, 9:30 बजे के बाद क्लास पूरा हो जाएगा, हम सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, तो दूसरी परिस्थिति हो जाएगी, हाल खाली हो जाएगा। तो जैसी माना सदा एक जैसी इस परिस्थिति नहीं रहती है। कोई विघ्न समस्या आया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो थोड़े समय के लिए आया और फिर चला जाता है, पूरा हो जाती है और ड्रामा का दूसरा अगला सीन आ जाता है। तो परिस्थिति आती है चली जाती है, लेकिन स्व स्थिति हमारी अपनी स्थिति है। हम उसमें जितना समय चाहें, सदा काल रहना चाहें, रह सकते हैं। तो स्व स्थिति की सीट इतनी श्रेष्ठ है, महान है, कि यदि हम सदा ही अपनी श्रेष्ठ स्व स्थिति में रहेंगे तो वहां परिस्थितियां हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। तो हम सदा ही अपनी श्रेष्ठ स्व स्थिति में रहें और परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए बाबा ने कहा तुम्हें किसी भी बात के कारण में नहीं जाना है। हर बात का निवारण करके चलना है। कुछ भी बात समस्या आई तो कई बार हमारे मन में देखकर उसको प्रश्न उठता है, अभी क्या करें, कैसे करें, या इन्होंने ऐसे क्यों किया, ये क्यों आए हैं। तो क्या क्यों में ना जाकर हमको बाबा ने नॉलेज दी है, जो भी कुछ हो रहा है वास्तव में वो बिना कारण के नहीं हो रहा है। उस हर बात के पीछे कोई न कोई राज हमारे कर्मों का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है। वो वैसे ही होना है, उसी में हमारा कल्याण है और वो निश्चित है। इसलिए हम क्या करें, कारण में ना जाकर उसका निवारण स्वरूप बनकर चले कि इसको कैसे इसके प्रभाव से हम मुक्त रहें, कैसे इस बात को खत्म करें, कैसे इसका निवारण करके चले। तो वो परिस्थिति स्वतः ही चली जाएगी या खत्म हो जाएगी, उस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे यदि निवारण स्वरूप बनते चले। और क्या क्यों में गए तो देखो उसका बहुत लंबा जैसे कि सोचते सोचते विस्तार हो जाता है और उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं, क्योंकि वहां स्थिति डाउन हो गई, साधारण हो गई, इसलिए हम उस छोटी सी बात को भी उसके प्रभाव से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें बड़ी बात को भी छोटा करना है। तो अगर छोटा करके चलेंगे, निवारण स्वरूप बन के चलेंगे, तो उसके प्रभाव से हम अपने आप को सहज ही मुक्त रख सकेंगे। और प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए हम कोई न कोई बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा करके चले। वैसे बाबा ने, आप सभी ने देखा होगा, जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो कई बातों में बाबा हमारे से हाथ उठवा के दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा करवाते हैं और हम सभी हाथ उठाते हैं कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे हैं। फिर बाबा कहते हैं इनका वीडियो निकालो है, कहते हैं ना, हाँ, ताकि बाबा प्रूफ रख सके अपने पास कि बच्चों ने इस डेट में ये बात की प्रतिज्ञा की थी है। तो हम अपने आप से पूछें कि उसको कितना कर पाते हैं। अगर हम उस प्रतिज्ञा को सदैव याद रख के चलते हैं कि मैंने बाबा से ये प्रतिज्ञा की थी, जैसे कि मान लो क्रोध मुक्त बनने की बात है, या किसी को दुख नहीं देना, या अपना योग का चार्ट 4 घंटे का या 5 घंटे का जितना भी हो, किसी बात में हम ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं ना, भैया आप मुझे इस संस्कार को परिवर्तन करके ही दिखाना है, कोई कमी कमजोरी को खत्म करना है, है? तो अगर उस प्रतिज्ञा को हम सदा स्मृति में रख के चलते हैं, भगवान के सामने मैंने ये प्रतिज्ञा की थी, तो वो समय आने पर आपको वो प्रतिज्ञा याद दिलाएगी कि मैंने बाबा से ऐसा कहा था, मुझे इसमें विजयी बनकर दिखाना है, हार नहीं खानी है। तो उस प्रतिज्ञा से बल मिलेगा, बाबा की शक्ति मिलेगी और उस परिस्थिति को आप सहज पार कर सकेंगे। तो मुझे एक अपना ही अनुभव याद आता है, शायद लगभग 10 साल हो गए इस बात को, यहाँ ओम शांति भवन में बाबा आए थे, सीजन का पहला ही डबल विदेशियों के लिए मिलने के लिए बाबा आए थे, सीजन की पहली मुरली बाबा ने चलाई, तो उसमें बाबा ने जीवन मुक्त बनने की बात कही थी कि जीवन मुक्त स्थिति बनानी है। तो जीवन मुक्त स्थिति की परिभाषा बाबा ने बताया कि जीवन में रहते हुए कोई भी विघ्न परिस्थिति या देह और देह के संबंध, वस्तु वैभव या मेरेपन के प्रभाव से मुक्त स्थिति कोई जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता, और भी एक आध पॉइंट थी कुछ ऐसे, तो वो बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने हाथ उठवाया कि जो ऐसा करके दिखाएंगे वो हाथ उठाओ, तो हमने भी उसमें हाथ उठाया था। तो अभी प्रतिज्ञा की तो उसकी परीक्षा तो होगी ना, है? तो भाई ऐसे ही तो नहीं, परीक्षा देने के बाद ही हम कहेंगे ना मैंने इसमें विजयी बना या इस पेपर को पास किया, तो ही विजयी कहलाएंगे। केवल हम यही रख के चले कि नहीं मैं विजयी रतन हूं, तो उसको विजयी नहीं कहा जाएगा। जो विजय प्राप्त करके दिखाए, विजयी बन के दिखाए, तो कहेंगे ना विजयी रतन। तो ऐसे ही अब वो प्रतिज्ञा की थी, तो लगभग 15 दिन के बाद ही या 10 दिन के बाद ही एक पेपर आ गया हमारे सामने। तो क्या हुआ कि आगरे की पार्टी बाबा से मिलने के लिए आ रही थी, तो उसमें 9 लोग थे, एक टीचर बहन और 8 माताएं, और जो टीचर बहन थी वो लौकिक में बहन की लड़की थी। तो उसको ज्ञान में लाने के निमित्त भी बाबा ने बनाया, सेंटर पर रखने के निमित्त भी बनाया, और वो टीचर्स वो बहन पार्टी लेके आ रही थी मधुबन। तो यहां से लगभग 1-2 घंटे की दूरी पर सिरोही के पास उनका एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रक से जीप आ रही थी वहीं से आगरे से, तो वो टकरा गई और 7 माताओं ने वहीं शरीर छोड़ दिया, 1 माता और 1 टीचर बहन घायल हुई, या 6 ने शरीर छोड़ा, 2 माताएं 1 टीचर बहन घायल हुई। तो मेरे पास फोन आया कि ऐसे आपकी बहन जी का एक्सीडेंट हो गया है। तो हमने वहां सेंटर फोन किया, भाई क्या समाचार है? तो वो जैसे ही मैंने समाचार सुना तो मुझे तुरंत बाबा से वो की हुई प्रतिज्ञा याद आ गई कि मैंने बाबा से प्रतिज्ञा की है कि मुझे जीवन मुक्ति स्थिति बनानी है, तो मैं मेरेपन के प्रभाव से या दे के संबंधों के प्रभाव से मुक्त रहना है। तो एक वो स्मृति में आते ही जैसे कि एक जागृति आ गई और शक्ति आ गई, चलो इनका जो भी हुआ है देखते हैं, बात करते हैं। तो मैं हमने फोन किया दोबारा सिरोही सेंटर पर, तो वहां मैसेज मिला भी कोई सीरियस ज्यादा नहीं है, वो उसको सिर में चोट आई है और होश में है, बात करती है वो, तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम अहमदाबाद लेकर जा रहे हैं, तो आप शांति वन में मिलने के लिए आ जाओ। तो ठीक है, मैंने कहा चलो, थोड़ा सा राहत मिली उस बात से सुनकर यह समाचार। तो फिर यहाँ हम नीचे मिलने के लिए गए, तो हम थोड़ा पीछे बादम पहुंचे, वो निकल गए थे आगे ही, फिर हम पालनपुर में जाकर मिले, वहां हॉस्पिटल में पहले वहां डॉक्टर को दिखाया। तो वहां जब मैं गया तो दूसरी एक बहन उनके साथ थी, तो उनसे उनको दूसरी बहन ने बोला कि सुनीता बहन उसका नाम था, देखो सुनीता बहन आपसे मिलने के लिए कौन आया है। तो आंखें बंद थी और उसी स्थिति में वो कहती है आत्मा, उसके मुख से आवाज निकली आत्मा। तो माना उस स्थिति में भी उसको आत्मिक स्मृति थी। तो फिर वहां से अहमदाबाद लेके गए, अहमदाबाद में भी डॉक्टरों को दिखाया, तो वहां डॉक्टरों ने बोला कि अगर भाई ये 48 घंटा पार कर गई तो समझो बचने की उम्मीद है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। चलो मैंने कहा ठीक है, जो भी होगा, बाबा बैठा है, इस आत्मा का जो भी पार्ट होगा। हमने उस सब कुछ संभाल की, देखभाल की, लेकिन मेरा कोई उसमें संकल्प नहीं चला, लेकिन मुझे बाबा की वो प्रतिज्ञा निरंतर स्मृति में रही कि मुझे जीवन मुक्ति स्थिति बनानी है, इसलिए सब प्रकार के प्रभाव से मुक्त रहना है। तो उसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में 5:45 बजे के करीब मेरे सामने ही, मैं उसके सामने खड़ा हूं और 2 हिचकी सी आई और आत्मा उड़ गई। तो मैंने किसी पहली बार अपने आंखों से किसी आत्मा को शरीर छोड़ते हुए देखा, लेकिन मेरा कोई संकल्प नहीं चला। और उसके बाद यहां दादी जी को फोन किया, तो दादी जी ने बताया कि वो बाबा से मिलने के लिए आ रही थी ना, तो दूसरे दिन ही बाबा आने वाले थे, तो अभी क्या करना है भाई। तो दादी ने कहा कि यहाँ तो काफी भाई बहने हैं 10-12 हजार, तो आप वहीं उनका जो भी करना है संस्कार करो। तो मैंने कहा ठीक है, तो वहां एक सेंटर पर ले गए, वहां पर संस्कार किया, वहां से सभी भाई बहन गए और शमशान में लेकर वहां संस्कार करके आए। तो मैंने देखा कि ये सब कुछ करते हुए, देखो लौकिक में उस आत्मा के साथ संबंध, सेंटर पर रखने के निमित्त बने, ज्ञान में लाने के निमित्त बने, और ऐसी आत्मा का भी अंत खुद को करना पड़े, तो आप सोच सकते हैं कितना प्रभावित होने की मार्जिन है ना। लेकिन एक बाबा से प्रतिज्ञा की थी कि नहीं, मुझे ऐसी जीवन मुक्त स्थिति बना के दिखानी है। तो एक बाबा की बहुत बड़ी मदद मिली रही है, सब कुछ करते हुए मेरा जरा भी कोई संकल्प मात्र भी मना हलचल में नहीं आए। तो कहने का भाव यही है कि बाबा जिस समय हमारे को जो कहता है या जो प्रतिज्ञा कराता है, उसको यदि हम स्मृति में रख के चलते हैं, उस पर दृढ़ रहते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना ही है, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी शक्ति बाबा की उसमें हमें मिलती है और हम उस परिस्थिति को सहजी पार कर लेते हैं, उसके प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख सकेंगे। तो इस तरह से भी प्रभाव मुक्त स्थिति बनाकर चलना है, और प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए हमारा यहाँ एक बार चर्चा हुई थी इसी टॉपिक पर तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप की मीटिंग में, सूरज भाई जी के साथ वो मीटिंग हो रही थी, तो उसमें इसी टॉपिक पर चर्चा हुई थी प्रभाव मुक्त स्थिति कैसे बनाएं। तो कई सारी बातें निकली उसमें, तो एक बात ये भी निकली उसमें कि याद करो, मतलब कुछ भी बात हो गई, हलचल हुई, तो उस समय याद करो कि बात बड़ी या बाप बड़ा, बात बड़ी या बाप बड़ा, याद करो उस समय। ये ज्ञान तो सबको है, बाप बड़ा बहुत सहज है कहने में, लेकिन जब कुछ बात ऊपर नीचे हलचल हो जाती है, परिस्थिति आ जाती, तो उस समय होता क्या है, ज्यादातर बात बड़ी हो जाती है कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा, ये ऐसे क्यों करते हैं, हैं? अभी क्या करें, कैसे करें, तो उस बात के प्रभाव में आ जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। लेकिन ये ज्ञान की पॉइंट हमें सही समय पर स्मृति में आए और हम उसको यूज कर विजयी बन जाएं, ये कब संभव हो सकेगा? ऐसा नहीं, याद तो सबको रहे, माना बुद्धि में तो है, सबके पास है, कोई नई बात मैंने नहीं बताई, लेकिन समय पर वो बात याद आए और उसका यूज कर विजयी बन जाएं, वो कईयों से नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको कोई भी कैसी परिस्थिति आई और आपको उसमें विजयी बनने के लिए वैसी सही ज्ञान की पॉइंट स्मृति में आए और आप उसका प्रयोग कर विजयी बन जाएं, उसके लिए किस बात की आवश्यकता है? उसके लिए आवश्यकता है ज्ञान को रिवाइज कर चलने की। ज्ञान को जब हम रोजाना, जैसे साकार मुरली हम रोजाना सुनते हैं, ऐसे एक अव्यक्त मुरली भी रोजाना पढ़े और उसका मनन चिंतन करें उस पर, और जो अच्छी पॉइंट लगे उसे अलग से नोट करें, तो उससे क्या होगा कि ज्ञान सारा रिवाइज होता रहेगा, और ज्ञान रिवाइज होता रहेगा तो क्या होगा, ज्ञान की सभी प्रकार की बातें इमर्ज रूप में रहेंगी, याद रहेंगी। दूसरे शब्दों में हम इनको कह सकते हैं ज्ञान स्वरूप हम सहज बन सकेंगे, और जो ज्ञान स्वरूप आत्मा होगी वो जैसी परिस्थिति, जैसी समस्या, क्योंकि ज्ञान स्वरूप बनी हुई है ना, वो तो वैसी पॉइंट का प्रयोग करके एक सेकंड में विजयी बन जाएगी, उसके प्रभाव से मुक्त अपने आप को रख सकेगी। तो इस तरह से हम रोजाना यदि ज्ञान को रिवाइज कर चलते हैं तो आपको सही समय पर सही पॉइंट याद आएगी और वैसी ज्ञान की पॉइंट का प्रयोग कर सहजी विजयी बन जाएंगे। तो ऐसी कई सारी बातें निकली, तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा हाँ ये तो बात बहुत अच्छी है। तो अगर हम भूल जाते हैं तो क्या होता है, एक व्यक्ति के, एक आत्मा के दो शब्दों को पकड़कर हम बैठ जाते हैं कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा, ये ऐसे क्यों करते हैं, और जब तक क्यों का निवारण नहीं होगा तब तक आप की स्थिति हलचल बनी रहेगी। अब दूसरे को परिवर्तन करना तो आपके बस की बात नहीं है, और जब तक वो परिवर्तन नहीं हो, उस कारण का निवारण नहीं हो, तब तक आपके पुरुषार्थ की गाड़ी वहीं खड़ी हुई है और समय तो ऐसे ही पूरा होने जा रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम बातों को महत्व ना देकर बाबा के ज्ञान को महत्व दो। ये भी एक निवारण है, प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने की एक विधि है, है कि हम बातों को महत्व ना देकर बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चले। तो देखो उस आत्मा के दो शब्दों को हम याद रख के हलचल में आ जाते हैं, और बाबा जो रोजाना 3-4 पेज की मुरली सुनाता है उसे सुनकर कई बार भूल जाते हैं। सोचने की बात है ना, तो बात बड़ी या बाप बड़ा है। तो ये पॉइंट आपको सही समय पर स्मृति में यदि आ जाती है तो एक सेकंड में आप कैसी बात के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। कहां दो शब्द और कहां इतना बड़ा सृष्टि का आदि मदंत का ज्ञान और सर्व खजानों का दाता बाबा। तो उसके आगे तो वो पाई पैसे की चीज है। तो यही बात, और भी कई सारी पॉइंट थी तो वो सब मैंने नोट की। और ऐसे ही को किसी काम से फोन किया एक सेंटर पर बहन जी को, तो मुझे याद आया चलो मैं इनका अच्छी पॉइंट निकली है तो सुना देते हैं। बहन जी को मैंने फोन पर वो पॉइंट सुना दी के कल हमारी ऐसे में इनका तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप की मीटिंग हुई थी और उसमें इस टॉपिक पर चर्चा हुई प्रभाव मुक्त स्थिति कैसे बनाएं, और ये पॉइंट उसमें निकली। तो उसमें एक पॉइंट ये भी थी कि यदि कोई भी बात हो जाती है तो उस समय याद करो बात बड़ी या बाप बड़ा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि उस आत्मा को उसी चीज की जरूरत थी और वो बहुत खुश हो गई, पूरा कर दिया, फोन बंद कर दिया। दूसरे दिन उस बहन जी का ही खुद फोन आता है मेरे पास और मेरे को कहती है कि भाई जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। मैंने कहा क्या हुआ भाई, किस बात का? तो कहती है कि आपने सही समय पर सही पॉइंट मेरे को सुनाई कि मैं किसी बात के कारण बहुत हलचल में थी, कोई बात ऐसी हो गई होगी तो उसके कारण मैं बहुत हलचल में थी और आपने जैसे ही ये पॉइंट सुनाई कि बात बड़ी या बाप बड़ा, तो एक सेकंड में उस बात को फुल स्टॉप लग गया और जैसे कि मैं हल्की हो गई। तो देखो बाबा के एक एक ज्ञान की पॉइंट में कितनी बड़ी समस्याओं का हल समाधान समाया हुआ है। यदि वो सही समय पर हमको उसको सही पॉइंट को यूज कर चले तो बड़ी से बड़ी समस्या या परिस्थिति को हम सहज ही पार कर सकेंगे, उसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे। तो अभी तो फिर भी कुछ ऐसी बातें नहीं है, कम है बहुत, लेकिन आने वाले समय में हम सभी के सामने ऐसी बहुत सारी बातें परिस्थिति घटनाएं होंगी जिनका कि पहले से कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है या अनुभव नहीं होगा। तो उन परिस्थितियों में हमारी स्थिति उनके प्रभाव से मुक्त रहे तो तभी संभव होगा जबकि पहले से हमने अपने आप को ज्ञान स्वरूप बनाया हुआ होगा। और सारे ज्ञान का सार क्या है एक शब्द में, बिंदी बन जाना, बिंदु बन जाना। अगर आप उस स्थिति में रहते हैं सब कुछ करते हुए मैं बिंदी आत्मा, आत्मा को देख रही हूं, आत्मा से बात कर रही हूं, बिंदु बाबा मेरे साथ है, तो इसी स्थिति में रहते हुए आपको ऑटोमेटिक किस समय पर क्या करना है वो सही स्मृति समय पर आती रहेगी। और दूसरी बात कि इसी स्थिति में रहते हुए आप ऑटोमेटिक उन परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रहेंगे क्योंकि परिस्थिति इस संसार की है, स्थूल है। और आप जैसे ही हम इस शरीर से न्यारे बनते हैं, शरीरी बनते हैं, तो आत्मा इस संसार की सभी परिस्थितियों के प्रभाव से एक सेकंड में मुक्त हो जाती है। जहां अपने आत्मिक स्वरूप में है आत्मा, आत्मअभिमानीपन की स्टेज में स्थित हम स्थित हैं, तो वहां आत्मा के जो निजी गुण हैं उनकी अनुभूति स्वतः ही होती है। सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान गुण शक्तियां सब इमर्ज रूप में है, तो जहां गुण स्वरूप बने हुए हैं, शक्ति स्वरूप है, है अपने स्वधर्म में हम स्थित हैं, तो उस स्थिति में कोई भी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती है। जब हम देह भान में आते हैं तो संसार की परिस्थितियां हमारे पर प्रभाव डालती हैं। तो इसलिए सदैव बिंदु बनकर चलना, आत्म अभिमानी बनकर चलना है, शरीरी बनने का अभ्यास करके चलना। मैंने पहले भी ये बात बतलाई है कि आप भी अभ्यास करके देखो, जिनको परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रहना है, श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, वो दो बातों का अभ्यास अभी से ही या अमृत वेले से ही करके देखें। क्या आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार ऐसे शरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है, 50 बार ऐसे शरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी। दूसरा, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। सारे दिन में कितने लोगों को देखते हैं, मैं तो 50 की बात कर रहा हूं सर। ये दो अभ्यास आप कर लें, तो इससे अगर आपने विधि पूर्वक ये दोनों अभ्यास किए हैं तो इससे क्या होगा, ये करने के बाद आपकी वो आत्म अभिमानीपन की स्थिति नेचुरल बन जाएगी, सहज बन जाएगी, और आप बैठे और बहुत ही जल्दी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएंगे और जो बाबा कहते हैं एक पावरफुल स्थिति, ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति बन जाएगी आपकी। तो करके देखिए जिनको वो स्थिति बनानी है, और जहां ऐसी स्थिति है वहां परिस्थिति तो बहुत कुछ भी आएगी, जैसे कि वसूली से कांटा बन जाएगी। आत्मा जब अपनी श्रेष्ठ ऊंची स्थिति में है तो वो परिस्थिति बहुत छोटी बात लगेगी, देखती हुई उस तरफ कोई ध्यान नहीं जाएगा, वो हमारी स्थिति को हिला नहीं सकेगी। तो हम परिस्थितियों के प्रभाव से इस तरह से मुक्त रह सकेंगे, और हमें इस बात को स्वीकार कर चलना पड़ेगा कि हम सभी ने दुनिया से एक नया रास्ता अपनाया है। अब तक लोग जिस रास्ते पर चल कर गए उससे हम दूसरे नए रास्ते पर जा रहे हैं, स्वर्ग की दुनिया के अधिकारी बनना ये कोई दुनिया में सोच सकता है? सिर्फ कहते हैं लोग कोई शरीर छोड़ा तो वही स्वर्ग पधारा है, लेकिन इस जीवन में एक राजयोग की पढ़ाई पढ़कर हम मनुष्य देवता बनना या नई दुनिया स्वर्ग के अधिकारी बनना ये तो उनकी कल्पनाओं से बाहर की बात है। तो हमने ये नया रास्ता अपनाया है ज्ञान योग की शिक्षा द्वारा मनुष्य देवता बनने का, जिस पर के संसार की में इस रास्ते को कोई जानता भी नहीं है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो नए रास्ते पर आप कभी भी जाओ तो क्या होगा, वहां कोई न कोई विघ्न परिस्थिति बाधाएं तो आएंगी ही ना है? अगर बने बनाए रास्ते पर जाएंगे तो वहां सहज हो जाएगा। तो हमने तो नया रास्ता अपनाया है, तो ये हमको समझ कर चलना पड़ेगा कि विघ्न परिस्थितियां तो आएंगे ही, इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना है। कोई आपको बता दे कि भाई इस रास्ते पर जा रहे हैं तो आगे नदी भी आ सकती है, कोई भयानक जानवर भी मिल सकते हैं, या और कुछ भी, पानी भी नहीं मिलेगा तो क्या करना होगा, तो फिर व्यक्ति सोचेगा ना पहले से सारा इंतजाम करके चलेगा। तो बाबा ने ये हम सब कुछ हमको बता दिया है। तो ऐसे ऐसे परिस्थितियां आएंगी है? आज की मुरली में था ना कि माया भी वो तंग करेगी है, विघ्न डालेगी, हमें देखेगी जरा अच्छी तरह से हिलाकर कि इन्होंने इतना ऊंचा लक्ष्य रखा है तो मैं देखूं तो सही, जरा ऐसी मजबूत स्थिति बनाई है। तो विघ्न परिस्थितियां तो आएंगे ही, इसलिए हमें उनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, है? हर बात का हमें हर परिस्थिति में विजयी बनने का बाबा ने हमको तरीका विधि बता दी है, इसलिए उस विधि को अपना कर चलें तो सहज सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे और प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए हमें याद रहे कोई भी कुछ कहता है तो उस समय ये स्मृति में रख के चलना एक हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। चाहे अगली आत्मा जैसा भी व्यवहार कर रही है, अच्छा या बुरा जो भी है, वो अपना पार्ट बजा रही है, लेकिन मेरा पार्ट क्या है? मेरा पार्ट है हरेक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलना। कई बार क्या होता है, मान लो कोई किसी ने गलत व्यवहार हमारे से किया तो उस के व्यवहार को देखकर हम अपने पार्ट को भी चेंज कर लेते हैं, हम भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं। उसने एक काम ने दो सुना दिया है तो क्या हुआ, तो उसके प्रभाव से हम अपने आप को मुक्त नहीं रख सकते, उसके प्रभाव में आ गए ना। तो यहां पर आवश्यकता है कि हरेक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, मेरा पार्ट क्या है, हरेक के प्रति शुभ भावना रखना। तो हम अपने पार्ट को छोड़कर दूसरे के पार्ट से प्रभावित हो जाते हैं, अपनी सीट छोड़ देते हैं, है? तो जहां सीट से हम नीचे उतर आए तो क्या होगा, वहां अपसेट हो जाएंगे और अपसेट हुए तो माया अपनी ओर ले जाएगी, प्रभावित कर देगी। इसलिए जो हीरो एक्टर होगा, ड्रामा किसी ने फिल्म देखी होगी आप लोगों में से, तो जो हीरो एक्टर होगा ना वो किसी के पार्ट को नहीं देखेगा, वो उसको जो पार्ट मिला है उसको एक्यूरेट बजाएगा बस, और ऐसा पार्ट बजाएगा कि उसके पार्ट को देखकर सभी वाह 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 तालियां बजाए, ऐसा पार्ट बजाएगा। और एक साधारण आत्मा कई बार क्या करती है, हाँ पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं मेरे को, तो वो बजाते बजाते थोड़ा दूसरों को भी देखने लगेगा, तो कई बार उसमें क्या होता है, अपना पार्ट ऊपर नीचे होने लगता है। तो हमको भी हीरो एक्टर बनना है, कितनी महान आत्मा देव आत्मा हम बनने जा रहे हैं, तो ये स्मृति में रख के चलना है कि इतने ऊंचे प्राप्ति हमें करनी है तो उसके लिए कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा ना। देखो एक मूर्ति जो मंदिर में जिसकी पूजा होती है तो उसको बनाने के समय कितनी छेनी और हथौड़े की चोट सहन करनी पड़ती है, और वो चोट सहन करते करते उसको अच्छी तरह से ठोक ठोक कर मूर्ति का रूप देता है कारीगर। तब जब मूर्ति बन के वो तैयार हो जाती है, मंदिर में जब स्थापना हो जाती है तो उसकी पूजा होती है। तो यहां तो हम बाबा हमें जीते जी इसी जन्म में वो सभी देवी गुण और शक्तियों की धारणा करके एक मनुष्य देवता समान बना रहा है। तो हम जब प्रैक्टिकल में वो बन रहे हैं तो जरूर ऐसी आत्माओं को तो अनेक बातें विघ्न परिस्थिति सहन करनी ही पड़ेंगी, उन्हें पार करना ही पड़ेगा, तभी हम जाकर अपने हमने जो लक्ष्य रखा है उस श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, उस लक्ष्य को पहुंच सकेंगे। तो इसलिए हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो अनेक हलचल की परिस्थितियों में रहते हुए उनके प्रभाव से मुक्त रहकर एक प्रभाव मुक्त स्थिति बनाकर और अपने चेहरे चलन से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।